بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم نے جو پچھلا کچھ عرصہ یہ 3-4 میٹنگ میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو ہم نے وی لرنڈ اباؤٹ کانورسیشنز، افیکٹو کانورسیشنز. یہ جو اس طرح کے جتنے بھی ٹاپکس ہیں اور یہ بہت سارے آتے رہیں گے، یعنی مختلف چیزوں کے حوالے سے ہم دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں، اس کے پرنسپلز کیا ہیں، اس کے طریقے کیا ہیں. اگر ہم نے ایگریمنٹ شو کرنا ہے تو واٹ از دا موسٹ افیکٹو وے آف شوئنگ ایگریمنٹ، اگر ڈس ایگریمنٹ ہے تو اس کا کیا طریقہ سب سے اچھا ہوگا. یہ ویریس ٹاپکس اینڈ دیز ٹاپکس آر ویری امپورٹنٹ. اسی طرح سے ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ اب ویل بی موونگ ٹورڈز دا پرنسپلز آف دا یونیورسل پرنسپلز، جس کی بیسس پر ہم اپنی زندگی کو شیپ کرنے کا سوچ سکتے ہیں اگر ہم چاہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں اگر آپ ان کے اوپر غور کریں تو اگین ایک پرابلم پیدا ہو سکتی ہے ذہنوں میں. وہ پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جس طرح سے بالکل پہلے سیشن میں یہ گزارش کی تھی کہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ کیریکٹر ڈیولپمنٹ کا ٹارگیٹ اصل میں انٹرنل پروسیسز ہوتے ہیں اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ ظاہر کو ٹارگیٹ کرتی ہے. یہ جو ایسپیکٹ ہے اس کے پیش نظر ایک بڑا ہی امپورٹنٹ ٹاپک جس کو آج ہم لے رہے ہیں، یہ تقریباً ہر اسکل جس کو ہم انٹروڈیوس کرائیں گے، انشاءاللہ انٹروڈیوس ہوں گے اس سے، اس کے بعد یہ والا ٹاپک آئے گا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ دس از این آفٹ ریپیٹڈ ٹاپک، کنٹینیوسلی یہ ریپیٹ ہوتا رہے گا. یہ آپ کی اگر آپ اس کام میں اپنے آپ کو لگانا چاہتے ہیں تو آج کا جو ٹاپک ہے اٹ از ون آف دا موسٹ اسینشل ٹاپکس فار دس پرپز. اور اس کے لیے میں اس کا اسکرین شیئر کر دیتا ہوں جی. اگر اس کا جو عنوان ہے دیٹ از مینٹیننگ اے ریفلیکٹو جرنل. وین آئی سے مینٹیننگ اے ریفلیکٹو جرنل تو اور یہ کیوں کرتے ہیں ہم، اس کو بھی اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہے. یعنی اگر آپ یہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں اپنی ذات پر، یو آر ناٹ ریفلیکٹنگ آن دا ریزلٹس، یو آر ناٹ ریفلیکٹنگ آن واٹ یو وانٹیڈ ٹو اچیو اینڈ واٹ یو ڈیڈ اچیو. یہاں پر جو چیز ہو رہی ہے وہ اصل میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو آپ کرنا چاہ رہے تھے پروسیس میں، نہ کہ ریزلٹ میں. مثال کے طور پر آپ یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ اپنی فیلنگ سے اویئر رہیں، تو کیا آپ رہے یا نہیں رہے، اس کا ریفلیکٹو جرنل ہے یہ. میں یہ چاہتا ہوں کہ اس ٹاپک پر خاص توجہ دیں، بیکاز اصل میں جو سکل ہم نے پیچھے دیکھی ہے اباؤٹ ہولڈنگ افیکٹو کانورسیشنز، اس کو کیریکٹر ڈیولپمنٹ کا حصہ اصل میں یہ والا اسپیکٹ بناتا ہے. یعنی آپ اچھی کانورسیشنز کرتے ہیں، یہ بڑی اچھی سکل ہو سکتی ہے، کیریکٹر کا اس سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے، ہو ہی نہ، لیکن جب آپ اس اپنی کانورسیشنز کے ذریعے سے اپنے انٹرنل پروسیسز کے اوپر غور کر کے ان کو ریگولیٹ کرنا اور ان کو بہتر بنانے کی طرف توجہ دینا شروع کر دیتے ہیں، تو یہاں سے اصل میں یہ چیز کیریکٹر ڈیولپمنٹ سے ریلیٹ کرنا شروع کرے گی. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ بجائے اس کے کہ ہم اندر سے باہر کی طرف آئیں، ہم اپنے ایکشنز کو دیکھیں اور پھر دیکھیں کہ اندر کیا ہو رہا تھا. اس کی ایک خاص وجہ ہے جی. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ریزنز از کہ ہم اپنی زندگیوں میں ایک بڑا لمبا عرصہ جو گزار چکے ہیں وہ انٹرنل پروسیسز سے بہت زیادہ اویئرنیس کے ساتھ ہم نے نہیں گزارا. اور اگر کوئی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور کسی نے ایسی بات کر دی ہے کہ جو مجھے اوفینڈ کر دے، تو میں اپنی اوفینسو یو نو ڈیفینسو موڈ میں آ جاؤں گا، یا میں اس اوفینسونیس کو جواب دینے کی طرف آؤں گا، بجائے اس کے کہ اپنی چیز کو، اپنے مقصد کو یا اپنے پرنسپل کو اپنے ذہن میں رکھوں. میں آج یہ اور یہ ٹاپک جو ہے انشاءاللہ ہم آج کے سیشن میں اور اگلے سیشن میں ملا کے اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. میری آپ سب سے گزارش یہ ہے، بیکاز یہ صرف ایک انٹروڈکشن کا ہمارا سیشن چل رہے ہیں، انٹروڈکشن کا سلسلہ چل رہا ہے، میری گزارش یہ ہے کہ جو اس میں سیکھنے کی چیزیں ہیں اور جو پریکٹس کرنے کی چیزیں ہیں وہ اگر ہو سکے آپ کے لیے ممکن ہو تو آپ اس کو ضرور کیجئے. That will benefit you. I can guarantee you that it will be a very beneficial exercise کہ اگر ہم یہ کریں. سب سے پہلے تو اس سلسلے میں یہ جاننا ضروری ہے कि व्हाट इज द नीड फॉर मेंटेनिंग अ रिफ्लेक्टिव जर्नल, हम ये क्यों कह रहे हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा गौर कर लीजिए। और फिर मैं कोशिश करूंगा कि जो हमने कॉन्वर्सेशंस की अभी बातें कुछ देखी हैं उसमें से एक स्लाइड के साथ उसको, इस नीड को रिलेट करके आपको दिखाऊं। इसकी एक वजह है, आप वो जो टोटल स्लाइड्स थी कॉन्वर्सेशन में वो शायद चार थी, इफ नॉट मोर और लेस चार थी, तो आप उसके ऊपर अब खुद से गौर कर सकते हैं। मैं एक स्लाइड के ऊपर आपके साथ गौर करके एक दरवाजा खोलना चाहता हूं कि उसके बाद आप खुद उसमें एंटर हों और फिर उस पर रिफ्लेक्टिव एक्सरसाइज करें कि क्या ये समझ में आई है आपको। एंड ऑब्वियसली वंस यू डू दैट एंड इफ यू कैन डू दैट ड्यूरिंग दिस वीक, तो फिर हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते इस पर बात भी कर सकते हैं। अच्छा जी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो इट शुड ऑलवेज बी इन माइंड वो ये है कि मोस्ट इफ नॉट ऑल ऑफ आवर एक्शंस एमिनेट फ्रॉम आवर इंटरनल प्रोसेसेस। हम जो कुछ करते हैं, हम क्या बात करते हैं, हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं सिचुएशन को, हम क्या कर रहे हैं, जो कुछ बज़ाहिर आपका आपको दिख रहा है मेरा, इसके पीछे बहुत सारे इंटरनल प्रोसेसेस शामिल होते हैं, लाइक परसेप्शंस, मेंटल पैटर्न्स, इंटेंशंस, मोटिव्स, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। बेतहाशा इंटरनल प्रोसेसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है जी, आप जब कोई काम करते हैं, आपसे मेरी मुराद है हर इंसान, यानी व्हेनेवर अ ह्यूमन बीइंग ही और शी वुड डू सर्टेन थिंग्स, तो इसके पीछे काफी सारे इंटरनल प्रोसेसेस होते हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम खुद भी उन इंटरनल प्रोसेसेस से आगाह नहीं होते, अनलेस वी पे क्लोज अटेंशन एट बीइंग कॉन्शियस ऑफ दीज इंटरनल प्रोसेसेस, मोस्ट ऑफ द टाइम वी रिमेन अनअवेयर ऑफ देम। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें अक्सर औकात ये पता नहीं चलता कब हम हमारा जो हमारी इमोशंस, हमारी थॉट्स कब असल में हाईजैक होकर तो अब इंटेंशनल नहीं रही हैं, बल्कि आपसे आप चलती चली जा रही हैं। ये अक्सर औकात होता है जी लोगों के साथ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरे साथ नहीं होता है, यानी इंसानों के साथ अक्सर औकात होता है। When we act without the awareness of our internal processes, ये बड़ा important point है जी, we tend to become reactive and we are more likely to regret our action later. अगर मैं अपने internal processes से बिल्कुल ना आशना हूं तो उसके नतीजे में आम तौर पर मेरा सारे का सारा control मेरी environment के हाथ में होता है। मुझे अगर गुस्सा चढ़ाना है तो मुझे आप गुस्सा चढ़ा सकते हैं, मैं अगर आप चाहते हैं कि मैं हंसूं तो आप कुछ करके मुझे हंसा सकते हैं, यानी मेरी सारी की सारी फीलिंग्स जो है वो असल में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के पास गिरवी हैं, वो कंट्रोल कर रही है। वी टेंड टू बिकम रिएक्टिव, इसका नतीजा ये निकलता है कि जो कुछ मैं देख रहा हूं और जिस तरह से मैं समझ रहा हूं सिचुएशन को, मैं उसके हिसाब से रिएक्ट करता हूं, मैं रिस्पॉन्ड नहीं करता हूं। मैं रिस्पॉन्स को और रिएक्शन को इंशाल्लाह आगे जब हम प्रिंसिपल्स पर आएंगे तो आपके साथ तफसील से शेयर करूंगा कि हाउ डू आई इन माय माइंड, जब मैं कहता हूं हम रिएक्टिव हैं और हम रिस्पॉन्सिव हैं तो इन दोनों में मैं कैसे फर्क करता हूं। यानी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, सबसे पहला पॉइंट ये कि हम अपनी जो कुछ भी हमसे एक्शंस हो रहे हैं वो एमिनेट कर रहे हैं, वो निकल रहे हैं हमारे इंटरनल प्रोसेसेस से, और इंटरनल प्रोसेसेस चंद मैंने यहाँ पे जिक्र कर दिए ताकि आप उसको समझ सकें कि वो क्या हैं, परसेप्शंस हैं, मेंटल पैटर्न्स हैं, हमारे इंटेंशंस हैं, मोटिव्स हैं, थॉट्स हैं, फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। ये मैं चाहता हूं कि आप अगर इनमें से कोई भी टर्म समझने में मुश्किल है तो आप इसको नोट कर लें और इंशाल्लाह ड्यूरिंग द क्वेश्चन आंसर सेशन आप इसको पूछ सकते हैं। दूसरा नुकता ये है कि जब तक हम We pay close attention के हमारे internal processes क्या हैं, most of the times we remain unaware of them. And when we act out of awareness, without awareness, तो उसके नतीजे में हमारे awareness of our internal processes, तो we tend to become reactive. और reactiveness की सबसे important बात यह है कि हर reactive आदमी असल में अपना control दूसरे के हाथ में दे रहा है। इसको आप नहीं यूं समझें, अपनी लैंग्वेज पर अगर आप ज्यादा गौर करेंगे तो आपको इस चीज का एहसास होगा। अगर आप मिसाल के तौर पर ये कहने के आदी हैं कि उसकी इस हरकत ने मुझे बड़ा गुस्सा चढ़ा दिया, तो असल में आप ये कह रहे हैं कि वो मुझे गुस्सा चढ़ा सकता है, उसकी इस हरकत से मैं बहुत खुश हुआ, वो मुझे खुश कर सकता है, मेरी सारी जिंदगी का कंट्रोल बाहर खड़ा है। ठीक है जी, इसके ऊपर भी अगर कोई पॉइंट हो जिस पर आप बात करना चाहें तो प्लीज नोट दैट डाउन एंड वी विल टॉक अबाउट इट ड्यूरिंग द क्वेश्चन आंसर सेशन। चौथी बात यह है कि अवेयरनेस ऑफ आवर इंटरनल प्रोसेसेस एनेबल्स अस टू रेगुलेट दोज प्रोसेसेस एज वेल एज आवर एक्शंस एंड टू रिस्पॉन्ड टू द सिचुएशन मोर इंटेंशनली। अवेयरनेस इसके लिए लाजिम है, यानी आप अगर अपने इंटरनल प्रोसेसेस से अवेयर हैं तो फिर असल में आपके पास ये चांस है कि आप उनको रेगुलेट कर सकते हैं। आपको अगर ये पता चल जाए इससे पहले कि आप रिस्पॉन्ड करें कि मैं ये समझ रहा हूं, मैं इस वक्त ये सोच रहा हूं कि ये जो शख्स मेरे से बात कर रहा है इसकी इसकी इंटेंशन मुझे एक्सप्लॉइट करना है, अगर मैं ये समझ जा चुका हूं पहले, इसके बारे में अवेयर हो गया हूं, तो अब मेरा रिस्पॉन्स बजाय उसकी बात पर होने के हो सकता है कुछ क्लैरिफिकेशन चाहे कि ये मेरी प्रॉब्लम है, मैं कुछ इस मसले में उलझा हुआ हूं, या मिसाल के तौर पर मैं ये चाहूं कि ये इस वक्त गुफ्तगू रोक दी जाए। मैं आगे चल के इसके साथ आपके साथ इस पे शेयर भी करूंगा। आई हैव सीन मैनी पीपल जो विदाउट इंटेंशन विदाउट द कंट्रोल और द अवेयरनेस वो आमतौर पर इस तरह के काम हो जाते हैं हमसे कि मसलन दो दोस्तों के बीच में दोस्ती करा ली है। अब मकसद बिल्कुल क्लियर है, दो दोस्तों की लड़ाई हो गई है, आपके बड़े बचपन के दोस्त हैं उनमें से दो की लड़ाई हो गई है आपस में, मिसअंडरस्टैंडिंग है आपके ख्याल में, आपने ये सोचा है कि मैं जाकर उसकी दोस्ती करा दूं, ठीक है ना जी, इनकी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करा दूं, और एक दोस्त ने आप पर ऐसा कमेंट कर दिया है कि जिसके नतीजे में आपकी फीलिंग्स फ्लेयर अप हो गई हैं और बजाय इसके कि आप दोस्ती कराने में कामयाब होते आप भी लड़के आ गए। सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट इफ वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर इंटरनल प्रोसेसेस वी कैन एक्चुअली वी हैव नो चांस ऑफ रेगुलेटिंग दोज प्रोसेसेस। हमारे लिए अगर कोई चांस है अपने प्रोसेसेस को रेगुलेट करने का तो वो इससे पैदा होता है कि हम अवेयरनेस पैदा करें। और इससे बाद अगली बात यह कि मेंटेनिंग अ रिफ्लेक्टिव जर्नल इज वन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स फॉर डेवलपिंग अवेयरनेस ऑफ आवर इंटरनल प्रोसेसेस। ये एक टूल है जी, हम और टूल्स भी इसमें इंशाल्लाह इस वर्कशॉप में आगे चल के मैं एक और टूल्स भी इस अवेयरनेस के लिए इंट्रोड्यूस कराऊंगा। और इस हवाले से जो लोग माइंडफुलनेस की एक्सरसाइज करने की प्रैक्टिस रखते हैं मैं उनके लिए बस सिर्फ ये बता देना चाहता हूँ अभी, वरना आगे चल के हम इसको डिटेल में देखेंगे कि इसमें जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, वो मेडिटेशन भी है। मेडिटेशन का मकसद असल में अपनी फीलिंग्स और अपने इंटरनल प्रोसेसेस से अवेयर होना है। मैं मेडिटेट करके ज्यादा से ज्यादा अपने आप को इंटेंशनल बना सकता हूँ बिकॉज आई बिकम मोर अवेयर ऑफ माई फीलिंग। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं आप थोड़ी देर के लिए गौर करके देखिए कि हमने व्हेन वी टॉक्ड अबाउट द गाइडलाइंस ऑफ कॉन्वर्सेशंस, आपको याद होगा जो हम पिछले 3-4 हफ्ते काम करते रहे हैं गाइडलाइंस के बारे में, मैं उसमें से पहला पेज ले रहा हूँ जी, सिर्फ आई एम जस्ट टेकिंग द फर्स्ट पेज, और जो बाकी पेजेस हैं उनके ऊपर आप उनको सामने रखकर सोचिए कि क्या आप इसको समझ पाए हैं। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई विल टेल यू दैट ये जो हमने पहला पेज था मैंने उसकी पिक्चर यहाँ पे रख दी है जी। नंबर वन पॉइंट वॉज दैट द पर्पज ऑफ कॉन्वर्सेशन इज नॉट टू विन अ डिबेट। सपोज सपोज फॉर अ मोमेंट दैट आपकी एक कॉन्वर्सेशन शुरू हुई है और किसी ने ये बात की है कि तुम तो हमेशा एक फजूल बात ही करते हो, ठीक है जी, या करती हो, और इसके नतीजे में नाउ द फर्स्ट थिंग दैट हैज स्टार्टेड हैपनिंग इज दैट यू आर डिफेंडिंग योरसेल्फ, ठीक है जी, यू आर ट्राइंग टू, अब क्या हो क्या रहा है अंदर से क्या हो रहा है इसको गौर कीजिएगा, यानी आपकी फीलिंग एकदम न्यूट्रल फीलिंग से इट विल बिकम अ लिटिल हाइपर यू विल बिकम अ लिटिल डिस्टर्ब्ड, इससे आप अवेयर नहीं हुए, आपकी थॉट ये हो जाएगी कि इसकी मिसाल के तौर पर कि इसकी क्या मिजाल के ये मेरे साथ इस तरह की बात करे, इससे आप अवेयर नहीं हुए और आपने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड यू, विदाउट कीपिंग इन माइंड कि आपका असल में इस पूरी सिचुएशन, इस पूरी कॉन्वर्सेशन में मकसद क्या था। आप असल में उसके हाथ में अपना कंट्रोल देकर, दूसरे के कॉमेंट पे अपना कंट्रोल देकर, यू हैव लॉस्ट योर वे। तो पहले ये जो कुछ हुआ, यानी अगर आपने डिफेंसिव कोई बात कह दी है, तो इससे पहले बहुत कुछ ये हो चुका है कि आपके कुछ इंटरनल प्रोसेसेस चेंज हुए हैं। मैं असल में इसकी बात कर रहा हूं कि अगर आप उस पर अवेयर नहीं है तो आप अनजाने में बातें करनी शुरू कर देंगे और जिस तरफ आप नहीं लेके जाना चाहते गुफ्तगू को, उस तरफ जानी शुरू हो जाएगी। लिसन एज अटेंटिवली एंड एम्पैथिकली एज पॉसिबल, लिसन टू अंडरस्टैंड एंड लर्न, ट्राई टू रिमेन प्रेजेंट इन द मोमेंट। मैं इसमें मिसाल के तौर पर आपको समझाता हूं कि क्या होता है। आपकी अटेंशन जो है वो प्रेजेंट में, यानी जो बात हो रही है उस तक नहीं रहेगी अगर आप ये सोचने लग पड़े कि अगर ये बात मान ली जाए तो इसका नतीजा क्या निकलेगा। यानी आप बजाय बात पे अपनी तवज्जो देने के, आप उस अपनी तवज्जो को उठाकर उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे ले जाएं, एंड यू आर स्टिल नॉट अवेयर ऑफ इट। अगर आप इफ यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, तो फिर असल में आपके साथ जो कुछ होगा, यानी व्हेन यू विल लूज योर अटेंशन, आपके अंदर एम्पैथी की कमी हो जाएगी, आप मोमेंट में प्रेजेंट नहीं रहेंगे, ये सब कुछ हो जाएगा। लेकिन असल में हुआ क्यों है? बिकॉज देयर वाज समथिंग दैट यू वर थिंकिंग व्हिच वाज नॉट इन द मोमेंट। अगर आपकी थॉट्स आपको हाईजैक कर ले तो ये सिचुएशन पैदा हो सकती है। तीसरा पॉइंट है ही इंटरनल प्रोसेसेस के बारे में कि मैं अगर अपनी फीलिंग से अवेयर नहीं हूं, मिसाल के तौर पर आप अगर स्ट्रेस में हैं बहुत ज्यादा, तो इससे अगर अवेयर है तो आप हो सकता है कि इस मौके पर गुफ्तगू रोक दें या इस मौके पर गुफ्तगू शुरू ना करें, बिकॉज दिस इज नॉट द राइट इमोशन टू एंटर इनटू अ कॉन्वर्सेशन। यही वो चीज है कि जो कॉन्वर्सेशन को अच्छा या बुरा बनाएगी। इसी तरह से आस्क एंड सपोर्ट आस्किंग क्वेश्चंस दैट विल क्लैरिफाई द अदर पर्सन्स पर्सपेक्टिव। अब ये देखिए ये क्या चीज है, यानी बजाय इसके कि मैं गुफ्तगू में जवाब दूं, मुझे एक मौका मिल गया है मैं अपनी बात को सही साबित करने का, लेकिन मैं यहाँ पर ये चाहता हूँ कि मुझे दूसरे का पर्सपेक्टिव समझ के आए। ये जो एक साहब बात कर रहे हैं और इतनी कन्विक्शन के साथ बात कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि ये मेरी बात से इतना इख्तलाफ करते हैं, और मैं किस तरह से ये समझ सकता हूँ कि ये किस पहलू से सोच रहे हैं, किस स्टैंड पॉइंट से इनकी सोच शुरू हो रही है। ये जो सारा कुछ है ये अंदर हो रहा है, ठीक है जी, और बाहर जो नजर आएगा वो ये नजर आएगा कि यू विल सपोर्ट आस्किंग क्वेश्चंस दैट विल क्लैरिफाई द अदर पर्सन। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज कि एवरी टाइम यू विल मिस आउट, हर दफा जब भी आपसे इन पॉइंट्स को पर यानी यू नो एडहेयर करने में या उनके साथ इसके मुताबिक अमल करने में मुश्किल होगी, तो ये मुश्किल असल में आपके इंटरनल प्रोसेसेस से शुरू होगी। आपकी इमोशंस, आपका मोटिव अगर चेंज हो गया है, मसलन आपका मोटिव शुरू में कॉन्वर्सेशन में ये है कि आप बात को समझना चाहते हैं, लेकिन किसी ने ऐसी बात कर दी है कि आप अब उसको गलत भी साबित करना चाहते हैं, तो अब आपका मोटिव ही चेंज हो चुका हुआ है, ठीक है ना जी। आपकी इंटेंशन क्या है इस मौके पर बात करने में, उसके बारे में आपको अवेयर होना चाहिए। एंड नंबर 5 जो हमने लिखा था वो ये था कि अज्यूम दैट इफ अ पर्सन होल्ड्स एन आइडिया इम्पॉर्टेंट, देन इट इज इम्पॉर्टेंट इफ सीन फ्रॉम दैट पर्सन्स पर्सपेक्टिव, फाइंड आउट दैट पर्सपेक्टिव विदाउट जजमेंट। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है, जो पॉइंट नंबर 3 में भी जेरे बहस आती है और पॉइंट नंबर 5 में भी आती है, वो ये है कि हम आमतौर पर बात को सुनते हुए उसके बारे में जजमेंट्स दे रहे होते हैं, यानी ये बात ठीक है, ये बात सही है, ये बात समझ में आती है, और वो जजमेंट्स आमतौर पर अक्सर औकात इस चीज पर बेस्ड होती है कि बात क्या कौन रहा है, बजाय इसके कि हम बात के ऊपर तवज्जो दें, बात को समझें, उसके बारे में हमारा एटीट्यूड लर्निंग का हो। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसको आगे हम डिटेल में देखेंगे कि हम बयक वक्त लर्नर माइंडसेट और जजर माइंडसेट में नहीं रह सकते। आप एक ही वक्त में, यू कैन नॉट बी लर्निंग एज वेल एज जजिंग। फॉर लर्निंग यू हैव टू बी इनक्विजिटिव, और जजमेंट जो है वो बेसिकली फैसले की जो अल्लाह ताला ने आपको सलाहियत दी हुई है इसको जगाने से पैदा होती है। मैं ये चाहता हूं कि इस चीज के ऊपर आपने अगर ये समझ ली है, अगर नहीं समझ में आई कोई बात तो इसके ऊपर आप सवाल कीजिएगा, आप अपने सवालात नोट कर लें, हम इंशाल्लाह वी विल बी गेटिंग इनटू द क्वेश्चंस नाउ। लेकिन जो आप सबसे मेरी गुजारिश ये है कि इसको अगर आप सीरियसली लेंगे तो जो हमने चार स्लाइड्स की थी कॉन्वर्सेशन में, दो स्लाइड्स थी एनरिचिंग आवर ओन अंडरस्टैंडिंग के तहत और दो स्लाइड्स थी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अदर्स अंडरस्टैंडिंग के तहत, उस पर अगर आप चारों स्लाइड्स के इसी तरह पॉइंट्स पर देखें और ये समझने की कोशिश करें कि किधर हमारे इंटरनल प्रोसेसेस चेंज होंगे तो हमसे ये गलती होगी। ये जो लिखा है हर चीज में कि आपने कोशिश कर दी है ऐसा करने की, वो आप अगर कोशिश के बावजूद भी नहीं कर पाए तो देर इज समथिंग इन योर इंटरनल प्रोसेसेस विच इज हिंडरिंग यू। इसके बारे में अवेयरनेस हमने पैदा कर ली अगर, तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि हम अपनी इन गाइडलाइंस पर ज्यादा बेहतर तरीके से अमल पैरा हो सकेंगे। मैं आज इतनी बात करूंगा जी, अगले हफ्ते मैं कोशिश करूंगा कि ये जो रिफ्लेक्टिव जर्नल है, रिफ्लेक्टिव जर्नल का आज आपने ये समझ लिया कि इसका मकसद क्या होता है इसको मेंटेन करने का। इसमें अगर कोई लैंग्वेज का इशू हो मेरी इस पूरी गुफ्तगू में तो आप प्लीज डू नॉट हेजिटेट, मुझे बताइएगा कि मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा जिस हद तक कर सकूंगा। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो मेरी गुजारिश ये है, गुजारिश ये है जी और मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, कि आप अपनी बेहतरी के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए जो बाकी स्लाइड्स भी हैं उन पर भी ये काम करके देखिए कि वो किस तरह से हमारे इंटरनल प्रोसेसेस पर डिपेंडेंट हैं, और मुझे अगले हफ्ते इस पर बताइए भी, फीडबैक दीजिए कि इसका फायदा हुआ या नुकसान हुआ या डोंट फील एनीथिंग। हम अब नेक्स्ट वीक जो हमारा काम होगा वी विल बी टॉकिंग अबाउट प्राइमरीली कि रिफ्लेक्टिव जर्नल बनाते कैसे हैं, इसमें आपने लिखना क्या है। जब आप एक दो ये समझ लेंगे तो ये आपको सिर्फ 10 से 15 मिनट देने हैं, अपने एक दिन पर एक जायजा लें और उसके बाद दो एंट्रीज करनी है। वंस यू स्टार्ट डूइंग देम आई कैन गारंटी यू इफ यू स्टार्ट डूइंग देम रेगुलरली इट विल हेल्प ट्रिमेंडसली इन अंडरस्टैंडिंग योर ओन इंटरनल प्रोसेस। आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग नहीं पैदा होगी, आपको उसके अवेयरनेस नहीं सिर्फ पैदा होगी बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उस पर कंट्रोल करना आप सीखना शुरू कर देंगे। तो ये मेरी आज की गुजारिशात हैं जी, इंशाल्लाह हम इससे आगे का जो टॉपिक है वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। आई विल बी हियर फॉर योर क्वेश्चन नाउ, जो भी आप सवाल करना चाहें यू मोस्ट वेलकम जी। जी
जी अस्सलाम वालेकुम मोई साहब। मोई साहब एक तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज मुझे अगर स्लाइड्स ये भेज दें ईमेल से, आई रियली बी ग्रेटफुल, और मैंने प्रीवियस वाली स्लाइड्स भी मिस कर दी हैं। आई डोंट नो इफ इट्स पॉसिबल टू सेंड ऑल ऑफ दोस बिकॉज़ आई थिंक दैट वुड रियली हेल्प मी।
मैं आपको पिछली वाली पहले भेज दूंगा जी, आप मुझे एक ईमेल कर दीजिएगा बिकॉज आई एम अ वेरी फॉरगेटफुल पर्सन अनफॉर्चुनेटली एंड आई विल डेफिनेटली रिस्पॉन्ड टू दैट। आप पहले पिछली वाली ले लीजिएगा एंड वंस यू गेट दोस तो फिर ये जो टॉपिक है ये एक दफा खत्म हो जाए तो मैं इनकी इकट्ठी आपको टेक्स्ट फाइल भेजूंगा जी। असल में
ओके थैंक यू,
एक पेज से सारा आ जाएगा।
बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ये सवाल है कि आपने कहा था मोटिव, अब मोटिव कुड बी गुड और बैड, एंड व्हेन यू से व्हाट इज योर मोटिव, जब कोई इंसान कोई बात करता है तो उसके पीछे कोई जरूरी है कि उसका कोई गलत मोटिव होना है या यू आर जस्ट ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट।
यू शुड जस्ट बी अवेयर ऑफ योर मोटिव। आई एम एक बात तो ये कि मैं आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट बीइंग अवेयर ऑफ द अदर पर्सन मोटिव, वी कैन नॉट बी, दैट इज आउटसाइड आवर डोमेन। व्हाट आई एम सजेस्टिंग इज दैट वी शुड बी अवेयर कि हमारा मोटिव क्या है। अगर हम अवेयर होंगे तो हमें इस चीज का एहसास हो जाएगा कि हमारी नजर में हमारा मोटिव सही है या गलत है, बस इतनी बात है। कई दफा सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि हम विदाउट बीइंग अवेयर हमारा मोटिव ठीक नहीं रहता, यानी मिसाल के तौर पर मैंने जिस तरह आपको अभी एक एग्जाम्पल दी, ये एक्चुअली मेरे साथ हो चुका है. दिस इज वॉट रियली हैपन्ड विद मी वंस, दैट टू ऑफ माई वेरी डियर फ्रेंड्स दे हैड अ मिसअंडरस्टैंडिंग एंड दे स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर. और एक दोस्त की का निकाह था उस दिन, एंड दी अदर फ्रेंड सेड दैट आई एम नॉट गोइंग टू कम टू योर निकाह. तो मैं इन्हें कहा यार तुम फिक्र ना करो, मैं उसको जाके मना लूंगा एंड सब ठीक हो जाएगा. He was very upset, you know, the person who the friend who was going to have that his wedding that day. तो जब मैंने ये कहा तो और मैं गया उससे को समझाने के लिए, तो उसने आगे से मुझे कुछ इस तरह की बात की कि तुम तो उसके चमचे हो. तो और इसके नतीजे में जो मोटिव था मेरा कि मैंने दो दोस्तों के बीच में दोस्ती करानी है, वो मोटिव बिल्कुल हट गया और अब ये बन गया कि इसकी ऐसी की तैसी मैं इसको सबक सिखाता हूँ. इसका नतीजा ये निकला विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट, मैं उसके साथ बजाय इसके कि दो दोस्तों की दोस्ती करा देता जो लड़े हुए थे, मैं उससे लड़के वापस आ गया. तो यूं समझ लीजिए कि ये जो वाक्या है, इट्स अ ये बड़ा इबरतनाक वाक्या है कि जिसमें मेरे लिए कि जिसमें विदाउट बीइंग अवेयर आई लॉस्ट माय मोटिव, आई लॉस्ट कंट्रोल, आई लॉस्ट अवेयरनेस ऑफ माय इंटरनल प्रोसेसेस. और उसका नतीजा ये निकला कि मैं अपने इंटरनल प्रोसेसेस को रेगुलेट नहीं कर सका. हालांकि अगर थोड़ी देर के लिए गौर कीजिए तो अगर किसी प्यारे ने, किसी भाई ने, किसी दोस्त ने आपको ऐसी कोई जुमला बोल दिया है और आप अवेयर हो गए हैं कि मेरे अंदर क्या फीलिंग डेवलप हो रही हैं, तो फिर उसके बाद इनको रेगुलेट करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होगा. ये है जो मैं कह रहा हूँ.
आप सही कह रही. दूसरी बात है अबाउट बीइंग एंग्री एंड हैप्पी. अब ये तो एक नॉर्मल चीज है कि somebody can make you very angry or another person can make you very happy. अब इसमें कोई मोटिव की जरूरत तो नहीं है. Isn't it a normal reaction कि आप किसी से बात करें and उनके जो जवाब है that makes you angry या किसी का जवाब makes you happy. तो ये मुझे आपकी जरा बात सही समझ नहीं आई. What were you trying to explain regarding this?
देखिए मैं इसकी इसकी काफी जगहों पर ये मिसाल देता होता हूँ दैट इट इज नेवर द अदर पर्सन हु इज मेकिंग अस हैप्पी और एंग्री. व्हाट इज एक्चुअली मेकिंग अस हैप्पी और एंग्री इज आवर परसेप्शन ऑफ व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग, व्हाई द अदर पर्सन इज सेइंग दैट, एंड हाउ डज इट अफेक्ट अस इन 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 द लॉन्गर रन. ये सारी जो परसेप्शन है हमारी, ये सारी जो थॉट प्रोसेसेस हैं, असल में इन थॉट प्रोसेसेस से हमारी इमोशंस बनती हैं. इसको मैं एक मिसाल से आपको समझाता हूँ. यानी एक ही बात दो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में आपके ऊपर बिल्कुल डिफरेंट असर डालेगी. मिसाल के तौर पर एक पुराना दोस्त है, बचपन का दोस्त है, वो बेतकल्लुफ है आपके साथ और उसने आपको आकर उसी लैंग्वेज में गुफ्तगू करनी शुरू कर दी है जिस लैंग्वेज में बेतकल्लुफी में आप बचपन से बात किया करते थे, तू तराख करके. ठीक है जी, और तू क्या करता है यार, तुझे समझ ही नहीं है यार, वो तुम इसको आप नहीं माइंड करेंगे. लेकिन अगर अगर मिसाल के तौर पर आपका मुलाजिम ये कह देगा तो ये माइंड करेंगे हम. यानी इट इज नॉट द हैपनिंग ऑफ एन इंसिडेंट, इट इज नॉट दोज वर्ड्स विच हैव द पावर टू कंट्रोल यू, इट इज द कॉन्टेक्स्ट इन विच दोज वर्ड्स आर बीइंग यूज्ड एंड द कॉन्टेक्स्ट इज बीइंग क्रिएटेड बाय माई ओन माइंडसेट. मैं उसको कैसे क्रिएट कर रहा हूँ, कैसे समझ रहा हूँ. यही वजह है कि एक ही चीज अगर दो डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में हो तो मेरे ऊपर बिल्कुल डिफरेंट असर डाल देती है. ये मैं होपफुली वाजे कर चुका हूँ जी. यानी जो इम्पोर्टेंट अवेयरनेस है इस मामले में वो ये है कि असल में इट इज नॉट समथिंग हैपनिंग आउटसाइड मी बट समथिंग इनसाइड मी विच इज एक्चुअली हैव यू नो फ्लेयरिंग अप माई इमोशंस. जो मुझे गुस्सा चढ़ा रही है, मुझे यू नो इंटरेस्ट पैदा कर रही है, एंगेज कर रही है या डिसएंगेज कर रही है, ये सब कुछ मेरे अंदर हो रहा है. ये है जो समझने की बात है.
एंड दिस अप्लाइज टू हैप्पीनेस आल्सो.
दिस अप्लाइज टू हैप्पीनेस आल्सो. यस, इट अप्लाइज टू हैप्पीनेस आल्सो. आई देखिए देयर आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इट. मैं व्हाट आई एम सेइंग इज दैट इट इज नॉट दैट यू नो समथिंग मेक्स यू सैड फॉर इंस्टेंस. व्हाट आई एम सेइंग इसको समझ लें कि चीजें जिंदगी में ऐसी हो जानी है जो यूनिवर्सली सबको ही सैड करेंगी. असल मसला क्या है, आपने उस सैडनेस में या बाकी का दिन गुजारना है, या आपने उस सैडनेस में ही बाकी हफ्ता गुजारना है, या यू विल गेट ओवर इट, यू नो गेट आउट ऑफ इट. ये जो लिंगरिंग इमोशंस होती हैं, ये प्योरली हमारे कंट्रोल में होती है। यानी इसको इसको इस तरह से समझ लें, एक फैक्ट आपके साथ शेयर करता हूं जी सबके साथ, दैट अकॉर्डिंग टू द रिसर्च, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ दैट, बट अकॉर्डिंग टू व्हाट पीपल से, व्हाट एक्सपर्ट से, इमोशन जो है, कोई भी इमोशन चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसकी जिंदगी, द लाइफ ऑफ एन इमोशन है क्या चीज? इमोशन इज, मैंने कोई चीज देखी, कोई चीज परसीव की, मुझे अच्छी लगी, ऐसे केमिकल्स रिलीज होंगे विच विल मेक मी फील ग्लैड, विच विल मेक मी फील डिलाइटेड। वो जो केमिकल्स रिलीज होते हैं उसके नतीजे में मुझे अच्छा फील होता है, और ये जो केमिकल है ये जिस्म में जो रिलीज हुए हैं ये डिजॉल्व हो जाते हैं इन 6 सेकेंड्स। एक इमोशन की जिंदगी 6 सेकेंड होती है, और मैंने कई दफा लोगों को देखा है कि सुबह गुस्सा चढ़ा था और शाम तक गुस्से में ही रहे। ये इमोशन नहीं है, ये असल में, अब मैं उस इमोशन को, आई एम ट्राइंग टू लिंगर ऑन विद दैट इमोशन, एंड आई एम ट्राइंग टू कीप दैट इमोशन अलाइव इवन विदाउट नोइंग दैट आई एम डूइंग दैट। असल प्रॉब्लम ये है, वाजे होगी कि मैं बात।
So this is a wrong thing to linger on with a negative emotion, or a positive emotion is fine, but negative one should let go. This is what you're trying to explain.
Yani, aapne, if you want to keep any emotion alive, it should be for a purpose. That is all that I'm suggesting. I'm not suggesting that any emotion is wrong or right, but there are effects of every emotion. हर इमोशन के कुछ ना कुछ अफेक्ट्स होते हैं जी, आप उन अफेक्ट्स को समझ लें। अगर इफ यू फील गुड, फॉर इंस्टेंस, कोई आदमी गुस्से में रहना पसंद करता है तो ठीक है, रखिए अपने आप को गुस्से में, आपका हक है जिस तरह रखना चाहें, लेकिन जनरली ये देखने में आया है कि हम आम तौर पर अच्छे ताल्लुकात में अगर रखना चाहते हैं आसपास अपने लोगों के साथ, तो इट इज नॉट वेरी एडवाइजेबल कि हम अपनी इमोशंस को बहुत ज्यादा हाई रखें हम के साथ।
सर, मैं ये कह रही थी कि मैं ये सही समझी हूँ कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम अपने पैराडाइम या ये इंटरनल प्रोसेसेस से अनअवेयर होंगे तो एक तरह से हम अपना रिमोट जो है वो दूसरों के हाथ में पकड़ा देते हैं कि जिस तरह चाहे हमें कंट्रोल कर।
मैं यही कह रहा हूँ।
हाँ, क्योंकि जाहिर है कि दूसरों की कन्वर्सेशंस या दूसरों की बातों पे बहुत खुश होना या बहुत नाराज होना या बहुत रोना, उसकी कोई सेंस नहीं बनती है ना। तो अगर हम उस पर सारा दिन एंग्री रहते हैं या नाराज रहते हैं तो वो हम इनहेंस खुद बढ़ावा, जैसे आप कह रहे हैं ना कि 3-4 सेकंड से ज्यादा उसकी एज नहीं होती, जो भी वो ड्यूरेशन नहीं होता, तो इसका मतलब हम उसको इतना बढ़ावा दे रहे हैं कि उसको हम अपनी पर्सनैलिटी का हिस्सा बना लेंगे, वो तो फिर कैरेक्टर डेवलपमेंट तो पीछे रह गया।
ऐसा ही होता है जी, और ये बिल्कुल ठीक कहा है आपने, यानी अल्टीमेटली इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द ऑफ योर पर्सनालिटी, ऐसा होता है।
तो फिर और फिर उस पे जब मजीद प्रैक्टिस करेंगे तो वो मजीद हमारी पर्सनालिटी में पक्का हो जाएगा। तो अगर तो हम अपनी डेवलपमेंट, कैरेक्टर डेवलपमेंट चाहते हैं तो उसमें फिर हमें जाहिर है कि कंट्रोल करनी पड़ेंगी ये सारी चीजें, क्योंकि हमें अपना इम्प्रूव करना है ना, अपनी पर्सनल, अपनी कैरेक्टर को और अपने आप को अच्छा बनाना है खुदा की नजर में। मसला ये है खुदा की नजर में बना, इंसानों की नजर में तो बनाना ही नहीं है।
Absolutely right. Yeah, I quite agree.
मैं सही समझूं, यही पूछ रही थी।
ऐसा ही है जी, ऐसा ही है। और इसमें जो मैं अर्ज कर रहा हूँ वो ये कि इसमें जो तरीका है वो रिफ्लेक्टिव जर्नल एक टूल है उस तक रसाई के लिए, यानी मैं अपने अपने इंटरनल प्रोसेसेस से ज्यादा अवेयर हो सकता हूँ अगर मैं ये रिफ्लेक्टिव जर्नल की एक्सरसाइज अपने साथ रेगुलरली करना शुरू कर दूंगी।
अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन था, आपने कहा कि जो जैसे गुस्सा है उसकी वजह, जो हम सारा वक्त कहते हैं कि दूसरे की वजह से गुस्सा चढ़ा है, तो अगर दूसरे की वजह से चढ़ा है तो ये क्या, अगर हम इसका प्रोसेस करेंगे तो क्या गुस्सा परमानेंटली खत्म हो सकता है या फिर भी आएगा?
नहीं, गुस्सा परमानेंटली खत्म तो नहीं होना चाहिए। एक्चुअली ये जो इमोशंस हैं ये बड़ी वैल्यू की इमोशंस हैं जी, दीज आर नेचुरल, ये कोई क्रिएटेड नहीं है। ऐसा नहीं कि हमने इमोशंस सीखी हैं दुनिया में आके, किसी ने हमें सिखाया है कि गुस्सा कैसे करते हैं। इमोशंस बड़ी नेचुरल है, अलबत्ता किन चीजों पर गुस्सा किया जाता है ये लर्नड होती है, ठीक है जी, आप जिस वक्त ये कहते हैं कि परमानेंटली गुस्सा खत्म हो जाए तो दैट विल नॉट बी नॉर्मल। अलबत्ता गुस्से में अपनी यानी लैंग्विश करने, गुस्से में लिंगर ऑन करते करने लग पड़ना, यानी उस गुस्से को खत्म ना होने देना, ये मेरे कंट्रोल में होता है। ये है जो असल में मैं कंट्रोल समझता हूँ कि होना चाहिए। एक तो ये कि ये रिकग्निशन के बाद होगा जी, यानी सबसे पहले आप रिकग्नाइज करेंगे कि आप गुस्से में हैं। नंबर दो ये कि आप उसको रेगुलेट करने की स्किल को जानते होंगे, तब कर पाएंगे। तो आइडियली ऐसा नहीं है कि किसी इमोशन को खत्म हो जाना चाहिए, दैट वुड नॉट बी नॉर्मल। अलबत्ता ये कि हम ये समझ सकते हैं कि ये जो इमोशन है ये आपकी जिस मकसद को आप हासिल करना चाह रहे हैं उसमें कहीं रुकावट तो नहीं है, और अगर है तो इसको ठीक किया जा सकता है।
मोई साहब, मेरा ये सवाल है दैट यू डू एक्सपेक्ट इमोशनल सपोर्ट. अब आप मुझे ये बताइए कि व्हेन वंस चिल्ड्रन आर लिविंग अब्रॉड एंड दे हैव वेरी बिजी लाइव्स, हाउ मच इमोशनल सपोर्ट कैन वन एक्सपेक्ट फ्रॉम देम इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस और इनलेस दे कांट कम बैक टू योर होम कंट्री इमीडिएटली. बट इसमें फिर कई दफा ये होता है कि दे आर angry episodes, you get distressed, unhappy, they get upset with you. So, इस सिलसिले में, what is the right way? Is there a limit to how much you should expect from your children? They are your children and you need their support.
नहीं, ये तो असल में हालात हालात पे बहुत डिपेंड करेगा जी। इसके बारे में किसी से पूछा नहीं जा सकता। एक बात तो ये कि अपनी एक्सपेक्टेशंस को कोशिश करें, जिंदगी में हर आदमी एक दूसरे से एक्सपेक्ट करता है, एंड दैट इज देयर इज नथिंग रॉन्ग। एक्सपेक्टेशंस ही हैं जो रिलेशनशिप्स बनाती हैं। और अगर किसी जगह पर आप एक्सपेक्टेशन लेस हो जाएं तो असल में वहां पर आपका रिलेशनशिप भी खत्म हो जाएगा। ये बात इंपॉर्टेंटली समझनी चाहिए जी। यानी ये कहना कि हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट ना करें, इसका मतलब है किसी के साथ कोई रिलेशनशिप ना रखें। हम रिलेशनशिप्स असल में नाम ही एक्सपेक्टेशंस का है, इसको सबसे पहले तो ये समझें। अब ये बात कि एक्सपेक्टेशंस क्या रियलिस्टिक होनी चाहिए, क्या मुझे अपने जहन में बैठ के अपने तौर पर कुछ एक्सपेक्टेशंस बना लेनी चाहिए, कुछ एक्सपेक्टेशंस क्या ऐसी हैं, मिसाल के तौर पर अल्लाह ताला ये चाहते हैं, अल्लाह ताला ने ये हमें बता दिया कि हमें अपने वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करना चाहिए, तो अगर ये एक्सपेक्टेशन है सोसाइटी में भी, लोगों की भी, तो आई थिंक दैट इज ऑल राइट। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग अनरीजनेबल अबाउट इट। लेकिन क्या बच्चे ये देने को तैयार हैं? और अगर बच्चे ये देने को तैयार नहीं है तो आप उनको अल्लाह ताला का हुक्म याद कराते रहे, उन्होंने नहीं देना तो नहीं देना। यानी अगर तो वो खुदा खौफी होगी दिल में तो वो इसमें आगे बढ़ेंगे और इसको अपने रवैये को ठीक करने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं होगी तो नहीं करेंगे। तो आई डोंट नो इफ देखें प्रॉब्लम क्या है। मैं ये बेसिकली इस पूरी वर्कशॉप के अंदर एक मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि देर इज अ लिंक इन इन ऑल दीज प्रोग्राम, इन ऑल दीज सेशंस, और वो लिंक ये आपके सामने ज्यादा से ज्यादा निखरता और खुलता चला जाएगा। और वो ये कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू असल में ये है विच स्प्रेड्स अक्रॉस दिस होल वर्कशॉप, वो ये है कि जिंदगी में सिर्फ एक शख्स है जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, और वो मैं हूँ। मैं अपनी एक्सपेक्टेशंस को कंट्रोल कर सकता हूँ, किसी के अपनी एक्सपेक्टेशंस को मीट ना करने को कंट्रोल नहीं कर सकता। तो मैं जिसको कंट्रोल कर सकता हूँ मैं उसी पर फोकस करूँ, जिस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, जब भी मेरा फोकस ऑफ अटेंशन उस तरफ हो जाएगा तो मैं असल में ज्यादा डिसअपॉइंट होऊंगा। और यही वजह होती है इमोशंस के बरकरार रहने की। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। आप किसी वजह से, किसी ने अगर अगर खुदा ना खास्ता आपकी एक्सपेक्टेशन तोड़ी है, तो ये बात जहन में रखिएगा कि द मोर यू थिंक अबाउट इट कि मैं उससे क्या करूं, वो किस तरह से मेरी एक्सपेक्टेशन में पूरा होते, द मोर यू थिंक अबाउट इट एंड द लेस द अदर पर्सन इज विलिंग टू लिसन टू यू, आपकी एक्सपेक्टेशन और ज्यादा टूटेगी एंड यू विल गेट इन फर्दर इन टू दैट यू नो डीप वेल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। लेकिन अगर मैं ये सोचने लग पड़ूं कि इस एक्सपेक्टेशन से मैं चूंकि डिसअपॉइंटेड हुआ हूं तो मैं आइंदा इसको ठीक कर लेता हूं, तो ये मैं ठीक कर सकता हूँ।
तो इसमें फिर अपने आप का कंट्रोल होना चाहिए, जैसे इट्स योर इंटरनल प्रोसेसेस
जी
दैट
जी
आप कितना इमोशनली डिस्टर्ब हो और मे बी द अदर पर्सन जस्ट डिडंट मीन टू डिसअपॉइंट यू बट इट्स योर ओन रिएक्शन। सो एज यू सेड एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू योर सेल्फ keep your
everything. I mean,
emotions, yeah. All your controls of everything should be in yourself, not in the other person's hands. So then,
particularly from the perspective of improvement, that the only person that you can improve ultimately is yourself. Nobody else. You can influence others if they are willing to take your influence. You can influence others the more influence you have developed because of a better and a stronger relationship. Agar influence aapka, agar relationship aapka itna strong nahi hai, ya aapka influence kam hai, to iske aur kitne bhi reasons ho sakte hain, unpe gaur karke dekhiye. Lekin sawal ye hai ki aap dusre ko zyada se zyada influence kar sakte hain, maximum influence kar sakte hain, lekin control nahi kar sakte. Control sirf ek zaat ko kar sakte hain aur wo aap hain. And that is what where our focus of improvement effort should be. Maine apne aap ko improve karna hai, ye hona chahiye.
मेरे साथ ये होता है मोहित साहब कि मैं अपसेट हो जाती हूँ, बिकॉज मे बी मैं एक्सपेक्ट बहुत कर रही हूँ, तो मैं आई हैव टू लर्न कि आई हैव टू कंट्रोल माय सेल्फ, आई कांट कंट्रोल द अदर पर्सन. सो आई 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 अंडरस्टैंड. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक
यू. और इसमें एक बड़ा अच्छा वो एक तरीका है जी, जो मैं लोगों के साथ इसमें आंदा तेरे बहस आएगा, कि जब भी आप ऐसी सोच में पड़ जाए कि जो आपके अंदर स्ट्रेस पैदा कर रही हो, जो आपके अंदर टेंशन पैदा कर रही हो, जो आपके अंदर डिसअपॉइंटमेंट और एंगर पैदा कर रही है, तो ये जरूर सोचिए कि मैं क्या ऐसे चीज में सोच रहा हूँ, मेरा जो सोच का फोकस है वो अपने कंसर्न्स पर है, अपने ट्रबल्स पर है, अपनी प्रॉब्लम्स पर है, या उनके सोल्यूशन पर है. एम आई थिंकिंग अबाउट वॉट कैन आई डू इन दिस सिचुएशन, और एम आई थिंकिंग अबाउट वॉट इज कॉजिंग मी दिस पेन. Agar I am thinking about what is causing me this pain and I don't have any control over that, it will only increase my pain.
I
आपकी
see,
बात बिल्कुल ठीक है, that ये हमारा जो focus है वो अपनी जात पे होना चाहिए.
बहुत बहुत शुक्रिया, really helped me.
Thank you. ये चैट में आया है जी कि please, is it true that two factors lead a person to a state of frenzy, like when he or she thinks ill of others and when his or her anger becomes excessive. Anger becoming excessive is the result of something. Aap jab bhi kabhi kisi wajah se ye mehsoos kare ki aapko zyada gussa chadta hai, to asal mein kuch cheeze sochne ki hai ji. Ek ye ki apne mental pattern se aware hona shuru ho jaye ki kya cheeze hain jo mujhe gussa chadhati hain, wo kyun chadhati hain, number 1. और नंबर 2, आपको जिस चीज से गुस्सा चढ़ता है वो आपके थॉट्स हैं जी. आपकी थॉट्स असल में, ये कहते तो ये है कि थॉट्स और इमोशंस दे आर सो इंटर रिलेटेड कि ये कहना मुश्किल है कि इमोशंस थॉट्स पैदा करती हैं या थॉट्स इमोशंस पैदा करते हैं. लेकिन मेरा अभी तक रुझान यही है कि जिधर इमोशंस थॉट पैदा करती हैं, वहां पर इमोशंस मेंटल पैटर्न से पैदा हुए हुए होते हैं. यानी मिसाल के तौर पर इसको यूं समझ लीजिए कि आपके साथ किसी ने इस तरह बात की है कि जिसको आप बदतमीजी समझते हैं तो आपको गुस्सा चढ़ेगा. वो जो आपका बदतमीजी किसी बात को समझना है, वो असल में आपका मेंटल पैटर्न होता है. तो आपके पैटर्न्स हैं, आपकी बनाई हुई थॉट्स हैं, आप इनको ठीक करें, आपकी जो ये खत्म हो जाएगी. जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको समझ लें. ये जो जिस तरह से आपका सवाल है, जिसको मैं अगर ठीक समझाऊं, आप यू कैन ऑलवेज ज्वाइन इन विद द चैट एंड योर वॉइस, इंशाल्लाह उससे बात ज्यादा क्लियर हो जाएगी. जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि जब आपकी आप अपनी इमोशन जो है, मिसाल के तौर पर किसी भी इमोशन, सैडनेस को अगर आप कंट्रोल नहीं कर रहे और आप उसको रेलिश करने लग पड़े हैं, उसी के अंदर रहना रेलिश करने लग पड़े. मैंने कभी कभी ऐसा किया लोगों से कि मैंने किसी ने कहा, किसी दोस्त ने कहा, किसी जानने वाले ने कहा कि आई फील वेरी लो टूडे, तो मैं उससे कहता हूँ कि अच्छा जरा सीधा खड़े हो जाओ. मतलब वेन यू फीलिंग लो, तो आपके जिस्म पर भी कुछ फर्क पड़ता है. ठीक है जी, यू ब्रीद शैलो, आपकी ब्रेथ जो है वो बड़ी शैलो हो जाती है. आपका जो सांस लेना है, आपके शोल्डर्स नीचे झुक जाएंगे, ये सब कुछ हो जाता है उसकी वजह. आप अपने आप को सीधा कर लें, अपनी ब्रीदिंग को स्ट्रांग कर लें, और थोड़ा सा अपने चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए, तो थोड़ी देर के बाद आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा. लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, ये सारी गुफ्तगु करने के बाद, ये सारा लेक्चर देने के बाद, अगला आदमी कहता है यार अभी दिल नहीं करता, यानी बस बात खत्म होगी, अभी दिल नहीं करता. यानी ये जो दिल नहीं कर रहा है इसका मतलब असल में ये है कि आप इस वक्त उस डिप्रेशन में रहना चाहते हैं, यू डोंट वॉन्ट टू गेट आउट ऑफ इट। ये जो एस्पेक्ट है जब आप किसी फीलिंग में रहने लग पड़े तो ये कई दफा एबनॉर्मैलिटीज बन जाती हैं। सैडनेस कैन बिकम डिप्रेशन और डिप्रेशन को फिर मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है अकॉर्डिंग टू एन अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट। मेरा हमेशा से ये ख्याल रहा है कि हमारे इस दुनिया में हमें अक्सर औकात टिल अनलेस वी आर ट्रूली इन ट्रबल, उस वक्त तक ये कंट्रोल हासिल है कि हम अपनी थॉट प्रोसेसेस को अपने आप को ठीक कर लें और अपनी जो ये फ्रेंजी की कैफियत हैं इसको खत्म कर दें। और वो जो ठीक कर रहे हैं उसमें बड़ी एफर्ट दरकार होगी जी आपकी मेरी, जो अपने आप को ठीक करना चाहते हैं। यानी इसको बहुत अच्छी तरह से ज़हन में रखिए कि कभी भी जिंदगी में जो एलिवेशन है, जो ऊपर जाना है, वो विदाउट एफर्ट नहीं हो सकता। आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करके एक एक स्टेप लेकर ऊपर चढ़ने में का हौसला करना होगा, तब कामयाबी होगी। अगर ये हौसला नहीं करेंगे तो डाउनहिल बहुत आसान है जिंदगी लेके जाना। तो जब आप इस तरह के इश्यूज में मुबतला अगर खुदा ना खास्ता कोई हो जाए, तो मैं तो ये राय रखता हूं जी दैट अनलेस के वो उसको मेडिकली ये करार दे दिया जाए कि वो बीमार है खुदा ना खास्ता, मैं ये राय रखता हूं कि हम इसको ठीक कर सकते हैं। इट विल बी एन एफर्टफुल थिंग, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम समटाइम्स, लेकिन किया जा सकता है। दूसरा एक और है जी यहाँ पर यासीन साहब का, मोहम्मद जैलो साहब, आई एम सॉरी इफ आई हैव यू नो प्रोनाउंस योर नेम इनकरेक्टली, अगर आपको मेरी इस जवाब समझ में आ गई हो तो प्लीज, वरना आप यू कैन आस्क अ फॉलो अप क्वेश्चन एनी टाइम। एक्सटर्नल स्टिमुलस के बारे में यासीन साहब ने फरमाया है कि एक्सटर्नल स्टिमुलस ऑलवेज एग्जिस्ट, लाइक द लव ऑफ माई चाइल्ड एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द चाइल्ड एग्जिस्टेंस, लाइकवाइज नेगेटिव स्टिमुलस विल बी रियल एज वेल। आई एम नॉट एट ऑल क्वेश्चनिंग द रियलिटी ऑफ द स्टिमुलस, व्हाट आई एम सेइंग इज दैट स्टिमुलस शुड नॉट कंट्रोल मी, दैट स्टिमुलस शुड नॉट lead me to abnormality or as Jalo saab just said to frenzy. Is cheez ka nahi hona chahiye. Dekhiye zindagi mein aisi situations aayengi ki jis waqt aapki aankhon mein aansu aa jayenge dukh se. Asal mein problem isme nahi hai, aansu aane mein dukh nahi hai. Kisi waqt emotion ka paida ho jana dukhi, yani ye sochiye ki Quran Majeed padhte hue आपको कई दफा ये फीलिंग हो सकती है कि आंखों में आंसू आ गए, लेकिन ऐसा कम होगा। मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं हुआ किसी के साथ कि अब वो सारा दिन ही उसमें रह जाए। आप एक चीज पढ़ रहे हैं, अचानक इट ओवरवेल्म्ड यू, आपकी आंखों में आंसू आ गए और वो बह पड़े। ये तो हुआ है, ये मेरे साथ भी हुआ है और ये एक बड़ा खूबसूरत मोमेंट होता है मेरे लिए, लेकिन उसके बाद आदमी आगे चल पड़ता है और फिर उसके बाद जिंदगी जो है वो फिर से आंखें भी नॉर्मल हो जाती हैं, आंसू भी सूख जाते हैं। ऐसा काम कभी नहीं हुआ मेरे साथ कि सारा दिन ही उसमें अब गुजर गया हो। किसी तरह से किसी के गाली देने पर गुस्सा चढ़ गया, ये एक बिल्कुल नॉर्मल चीज हो सकती है जी, लेकिन मैंने उसके बाद उसको रेगुलेट करना सीखा और फिर मैंने उस गुस्से के अंदर से अपने गुस्से को भी खत्म कर दिया और उसके साथ एक थोड़ी देर के लिए एक वो दूरी पैदा हुई थी तबीयत में दूसरे शख्स के साथ, वो भी खत्म कर दी। यानी ये कंट्रोल है जो हमें डिवेलप करना है जिंदगी में। अच्छा बुरा सब कुछ साथ चलना है, इसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका उस पर अच्छा फील करना, उस पर बुरा फील करना, यानी देखिए नॉर्मली हम ऐसा करते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके जिनको अब हम अपने ऊपर तारी कर लेते हैं। वो गुस्सा जो कि सुबह किसी इंसिडेंट पे चढ़ा था, अगर वो शाम तक कायम है तो फिर ये नॉर्मल नहीं है। देन इट शुड बी ट्रीटेड एंड यू आर द फर्स्ट डॉक्टर फॉर दिस ट्रीटमेंट, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग एक्चुअली। जासिन साहब आप इसमें कुछ भी और फरमाना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप अगर अपनी आवाज के साथ इसमें शामिल हो जाएं तो और ज्यादा अच्छा हो जाएगा जी। अच्छा सॉरी, आपका बाद में एक मैसेज आया कि सॉरी फॉर द मैसेज, इट वाजंट कंप्लीट, आई एम वेरी वेरी सॉरी दैट आई डिड नॉट सी दिस अनफॉर्चुनेटली। अच्छा जी, ये मुझे समझ नहीं आई, ये कुछ लोग यहाँ पर हैं और व्हाई आर दे सेंडिंग यू नो देयर मैसेजेस ओवर हियर? सुम्बुल सुल्ताना फ्रॉम नॉर्वे, शी सेज व्हाट कुड बी द डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग अ पीपल प्लीजर इन अ कॉन्वर्सेशन, व्हाट हार्म इट कैन क्रिएट ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशन? इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ हार्म ऑन यू. यू सी, इफ यू आर अ पीपल प्लीजर, you will actually be subjected to what is what somebody has called impostorship syndrome. हिपोक्रेसी पैदा होनी शुरू हो जाएगी. मैं असल में ये कोशिश करने लग पड़ूंगा हर वक्त कि क्या बात है जो लोगों को अच्छी लगेगी. मेरी जिंदगी असल में अपने बनाए हुए प्रिंसिपल्स के बजाय लोगों की पसंद के मुताबिक उसको रंगने की कोशिश करता रहूंगा मैं. ये चीज अच्छी नहीं है, आपके अपनी जात के लिए अच्छी नहीं है. ऐसा नहीं है कि दूसरों के लिए अच्छी नहीं है, दूसरों का इसमें क्या नुकसान? आप जो कुछ कर रहे हैं उससे दूसरों को ज्यादा से ज्यादा खुशी हो जाएगी, दुख हो जाएगा. सवाल ये कि आपकी आपकी अखलाकी आपकी जमीर पर कुछ असरात पड़ रहे हैं आपके हर एक्शन से, और वो अगर अच्छे नहीं पड़ रहे तो इम्कान ये है कि फिर बुरे पड़ रहे हैं. और मेरा ये ख्याल है कि पीपल प्लीजिंग जिसको आप कहते हैं वो असल में ये बना देती है कि आपका असल क्राइटेरियन ऑफ राइट एंड रॉन्ग कैन एक्चुअली बी व्हाट पीपल विल लाइक. एंड इवन इफ यू डोंट होल्ड अ पर्टिकुलर ओपिनियन, आपकी अगर राय वो है भी नहीं, तब भी आप कोशिश करेंगे कि उसको उस तरह से प्रेजेंट किया जाए कि लोग खुश हों. ये कोई अच्छा असर नहीं डालती तबीयत के ऊपर. आप ना बताना चाहें ना बताएं, किसी ने पूछा है कि जी आपको मेरा बनाया हुआ खाना कैसा लगा, तो आप मतलब कह दीजिए जी आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का, ये अल्लाह ताला ने रिज़्क़ दिया. वो दुआ पढ़ दें जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी एक खाने में पढ़ी है. सवाल ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको प्लीज करने के लिए कुछ ऐसे यू नो एलेबोरेट किस्म के अल्फाज बोलें कि जो इज आर नॉट कमिंग फ्रॉम योर हार्ट. सच्चाई के साथ जो बात करनी है वो कर देना बेहतर होता है. एक सवाल और भी है जी यहाँ पर. अगर किसी इंसान ने सीख और समझ कर ये फैसला किया है कि मुझे सादा तर्ज जिंदगी इख्तियार करनी है और इसे इर्द गिर्द के लोग बेवकूफ समझेंगे और इसे बातें करेंगे जिससे उसका इत्माद खराब हो, तो क्या करना चाहिए? अपने अंदर ये स्ट्रेंथ पैदा करनी चाहिए कि आप जो काम कर रहे हैं, जिस जिस चीज के ऊपर खड़े हैं, वो इतनी इम्पोर्टेंट है. देखिए, मैंने कल परसों एक जगह की मिसाल दी थी कि आप थोड़ी देर के लिए ये सोचिए कि अगरचे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहा जाता था और पूरा जो आपकी सोसाइटी थी, आपके लोग थे जो जानते थे आपको, वो आपके ऊपर एतमाद करते थे, हर चीज में एतमाद करते थे. लेकिन वो दुआ याद कीजिए कि जो नकल होती है कि अबू जहल ने मांगी बदर के मौके पर, और ये कहा कि परवरदिगार जिसने हमारी इस फैमिली की, इस कुरैश की फैमिली की जमीयत को तोड़ दिया है, आज तो उसको खत्म कर दे. यानी ये वो दुआ है कि जो उसने अपने पर्सपेक्टिव से, देखिए कितनी स्ट्रांगली मांगी वो. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस जहन में, जिस जहन में वो खड़ा था, वो एक ऐसी जगह खड़ा है कि जिसमें क्लियरली वो समझता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत किया, और इसी चीज को टारगेट कर रहा है वो कि अल्लाह ताला इसके मुताबिक फैसला फरमाए. इसी तरह से आप जब किसी चीज को ठीक समझते हैं और उस वैल्यू के अंदर आपके अंदर कन्विक्शन है और स्ट्रेंथ है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो उस पर मजाक उड़ा देते हैं, तो उस मजाक को से डिस्करेज होने के बजाय लोगों से कहें कि मैं एक डिफरेंट सेट ऑफ वैल्यूज रखता हूँ, मैं इस चीज में, मेरी वर्थ नहीं है कि मैं क्या पहनता हूँ या मैं किस गाड़ी पे आता हूँ या कैसे घर में या कैसे इलाके में रहता हूँ. मेरी वर्थ इसमें है कि मैं अल्लाह का बंदा बनना चाहता हूँ और उसमें जो कुछ ठीक समझता हूँ उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ. मेरा ख्याल है कि ये जो ये वाला एस्पेक्ट है, इसमें जब आप ज्यादा से ज्यादा अपने आप को स्ट्रांग करने की कोशिश करते रहें, और ये स्ट्रेंथ असल में पैदा होती है उस मोटिव से जिसके लिए आप अच्छाई इख्तियार करते हैं. यानी आप ना तो लोगों के लिए अच्छाई इख्तियार कर रहे हैं, ना हमें लोगों के लिए अच्छाई इख्तियार करनी चाहिए. आप जिसके लिए कर रहे हैं, आप बार बार इसके ऊपर गौर कर लें कि क्या वो वाकई अच्छाई है, बार बार कर लें. लेकिन जब कर लिया आपने गौर, तो जब तक आप उसको अच्छाई समझते हैं, तो अल्लाह ताला की स्ट्रेंथ पर अपने आप को खड़ा करने की जब आप कोशिश करेंगे, तो यू विल फाइंड लॉट ऑफ वर्थ एंड लॉट ऑफ स्ट्रेंथ इन योर सेल्फ. अल्लाह ताला इसमें हम सबको हौसला भी दे जी, और हम सबका वो सबसे बड़ा सपोर्टर और सहारा बने इस मामले में।
अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह जी, खैरियत है?
जी। सर साहब, आई जस्ट वांट टू आस्क वेदर एंगर इज वी कैन वी डिस्क्राइब एंगर एज अ मोरल क्वालिटी। इज इट अ मोरल क्वालिटी
What is,
टू गेट अनॉयड?
what is anger? I mean, I don't know what you're talking about, really. Can you please explain that?
At times people get annoyed, with a certain, with certain
Okay,
sort
okay,
of,
okay. I'm
with
so
certain
sorry.
manner. So can
I'm
we
so
just say
sorry.
that yes, it's a moral quality also to get annoyed sometimes? It's also good, okay, to get annoyed. Is it normal? Is it okay to get annoyed at some
Yes,
instance?
what I'm so, sorry. I could not understand the word, but what
Sorry,
you're
sir.
talking about is anger. And for me,
Yeah.
I pronounce more elaborate R's, so I did not understand that.
Yeah,
But anger is a quality. Anger is an emotion which is very natural, and none of these emotions is wrong. They are a very strong message from us to us. They can be actually educational, they can open doors of learning for us. The anger is not wrong, but what you do in anger can become wrong. So what I'm trying to say is, trying to understand what is making you angry will help you understand, is it your thoughts? Is it your perception? Is it your mindset? Is it your mental pattern? And then we can see if there is a problem with these things, like your perception, your mindset, your mental pattern, or if the anger is based on some principles. If the anger is based on some principles, for instance, if you feel angry that somebody has been unkind towards someone else, so this anger is a very important thing and it should be valued. But if you have become angry, for instance, at somebody using an abusive language with you yourself, you can feel sorry for the other person because he is doing something very wrong. But there's no need to be angry because he's not done anything against you, and he can't. So it's about understanding what is it that is making me angry, and then trying to see if whatever is making me angry is based on some principles, or is it based on my attachment with somebody, my attachment with my country or my religion or my prophet, or is it based on some principle? This is what this anger can help me achieve. Jalo sir, have I answered your question?
Yes, well answered, mashallah.
Thank you
Understand.
very much. Thank you
Thank
very
you.
much.
जी, मेरा ये क्वेश्चन था, आपने अभी कहा था कि कोई मुझे गाली देता है या किसी का बहुत ही बुरा एक्शन है जिससे एक उसके खिलाफ जैसे गुस्सा है या मतलब एक गलत फीलिंग आ गई है, तो इस चीज को कैसे हम प्रोसेस करेंगे?
यानी किसी ने ये गाली दी है, किसी ने आपके ऊपर कोई ऐसा कमेंट कर दिया जिससे आपको गुस्सा आ रहा है, तो आप ये फरमा रही हैं कि इसको
हाँ
हम
जी,
कैसे प्रोसेस करें। यानी सबसे पहले तो ये देखें कि वो जो उसका आपको गलत कहना है, गाली देने पर तो असल में गुस्सा करना छोड़ ही दें। यानी इसको समझ लें कि ये प्योरली प्योरली आपकी एक सोशली लर्न्ड ईगो है कि किसी ने मुझे क्यों गाली। गाली का कोई जवाब नहीं है जी, कोई भी जवाब नहीं, ठीक है जी? एंड यू शुड नॉट एट ऑल टेक इट सीरियसली। गाली असल में वो आदमी दे रहा है कि जिसके पास कोई आर्गुमेंट नहीं है, जो बोल नहीं सकता, जो बात नहीं कर सकता, जो जो असल में ये हौसला नहीं रखता कि अपनी बात को आपके सामने प्रेजेंट करे ताकि आप उस पर नक्त नजर कर सकें, उसको तो इग्नोर कर दें। यानी इसी तरह की बात है कि अगर किसी आदमी ने कहा है कि ये तो बिल्कुल ही बेवकूफाना बात है, तो मैं आम तौर पर इस तरह के कमेंट का जवाब देना पसंद नहीं करता हूं जी। अनलेस कि कोई पूछ ले कि आपने इसका जवाब नहीं दिया, तो मैं ही पूछता हूं कि आपको इसमें जो बात बेवकूफाना लगी है मुझे बताएं, मैं इसको ठीक कर दूंगा। यानी आपको असल में कमेंट किसी ने कर दिया है, तो एवरी कमेंट डज नॉट नीड टू बी टू डिस्टर्ब यू। एक बात, और अगर उसने डिस्टर्ब किया है तो जो चीज आपको अपने अंदर सोचनी है वो सबसे पहले तो ये सोचनी है कि क्या ये मेरे किसी प्रिंसिपल को इसने तोड़ा है, क्या मुझे इससे कोई चीज सीखनी है, क्या मैं सीख सकता हूँ, हैव आई डन समथिंग रॉन्ग जो मैं ठीक कर सकता हूँ। और अगर ये सब कुछ नहीं है, कोई प्रिंसिपल नहीं टूटा, कोई प्रिंसिपल आपका आपने किसी प्रिंसिपल को नहीं तोड़ा, तो फिर मेरा ख्याल है कि उसके बारे में उसको सोचना छोड़ दें। यानी वंस यू हैव, मैं ये हरगिज नहीं कहूंगा कि पहले लेवल पे ही जब आपकी इमोशन पैदा हो तो उसके बारे में सोचना बंद कर दें, नहीं ये मैं नहीं कह रहा जी, मैं ये कह रहा हूँ कि आप उसको बहुत अच्छी तरह से तवज्जो दें। आप ये देखिए कि जो जो कही गई बात है उसमें कोई वजन है, आप क्या ठीक कर सकते हैं उसको, उसमें कोई क्लैरिफिकेशन लेनी चाहिए आपको मेरी बात। अगर ठीक नहीं लग रही है तो मैं आपसे पूछूं कि जी क्या आपको ठीक नहीं लग रहा, मुझे बताइए कि व्हाट डू यू थिंक इज मिसिंग, किस तरह से मैं गलत बात कर रहा हूँ। ये सब कुछ आपने मुझे एक्सप्लेन कर दिया। अब जो चीज है वो मुझे इस लर्निंग माइंडसेट में रहते हुए ये सोचना चाहिए कि नहीं, मैंने इस चीज का देख लिया था जो आपने फरमाई है, मैं इस पे गौर कर चुका हूँ, आई डोंट नीड टू चेंज एनीथिंग अबाउट इट एंड आई जस्ट नीड टू स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट इफ इट इज डिस्टर्बिंग मी। मुझे किसी की बात पर डिस्टर्बेंस जब होती है, कोई भी ऐसी इमोशन पैदा होती है, तो जो चीज सोचने की है वो ये कि इस इमोशन ने मुझे मैसेज क्या दिया है, ठीक है ना जी। और वो अगर मैसेज जो है गुस्से का है तो इसका मतलब है कि कोई या तो प्रिंसिपल, जिस तरह मैंने कहा कि किसी आदमी ने किसी के ऊपर जुल्म कर दिया, आपको गुस्सा चढ़ा है, बड़ी अच्छी बात है, कैन यू डू समथिंग अबाउट इट, लेट्स मीट अप विद फ्रेंड्स। ये जो सैलाब आया और इसमें जो दुख हुआ आपको, ये जो दुखी फीलिंग है अंदर से, एक तड़प की फीलिंग है, ये कितनी खूबसूरत चीज है इस चीज के लिए कि हम कुछ करें। और फिर मैंने अपने इधर, मैं चूंकि पाकिस्तान में नहीं हूँ इस वक्त, तो मैं जितने दोस्तों से रब्ता कर सकता था कोशिश की और उनसे कहा कि अगर कोई जो इस तरह के काम कर रहे हैं कि क्या कर सकते हैं हम, तो फिर एक प्लान बना लिया। तो ये असल में इमोशन हमें बताती है कि कुछ करने की जरूरत है, ठीक है जी। अगर आपने उस इमोशन पे गौर कर दिया और ये समझ लिया कि नहीं, यहाँ पर तो असल में कोई प्रिंसिपल इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये कोई इंसानियत की वजह से मैं दुखी हो रहा था, ये तो सिर्फ इसलिए दुखी हो रहा था क्योंकि किसी ने, मिसाल के तौर पर मुझे गुस्सा सिर्फ इसलिए चढ़ रहा था कि किसी ने मुझे गाली दे दी थी, तो फिर सोचना छोड़ दें उसको, देयर इज नथिंग दैट यू नीड टू डू अबाउट इट। कोई आदमी गाली देता है, ये उसकी वैल्यू है। हम जब किसी की रिस्पेक्ट करते हैं तो इसलिए नहीं करते कि वो कौन है, हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम कौन है। इसी तरह से किसी एक गाली का जवाब हम इसलिए नहीं देते क्योंकि गाली असल में ये नहीं बता रही कि मैं कौन हूँ, गाली ये बता रही है कि वो कौन है जिसने गाली दी है। इस तरह से सोचना, इसको प्रोसेस करना है,
ठीक है जी। लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि किसी दूसरे ने बुरा किया और उससे अपने आप को थोड़े से टाइम के लिए डिस्टेंस पे कर लेते हैं हम लोग, जैसे उसके खिलाफ गुस्सा ये होता है कि उससे डिस्टेंस पे कर लें या उसके लिए एक बुरी फीलिंग आ जाती है।
Right.
तो ये जो एक बुरी फीलिंग है कि मतलब वो इंसान एक बुरा लगने लग जाता है, तो ये ठीक है या ये सोच भी गलत, इसको चेंज करना चाहिए?
अगर एक आदमी ने बुरा किया है तो मेरा ख्याल है उस एक्शन को बहुत बुरा समझना चाहिए, उस इंसान को इंसान, ये डिपेंड करता है कि किस तरह का बुरा किया है जी। जाहिर है कि इसमें एक बुराई और दूसरी बुराई में बहुत फर्क हो सकता है, और फिर उस इंसान के रवैये की वजह से भी ये मसला बन सकता है। अगर एक इंसान ने बुरा किया है और एक वन ऑफ इंसिडेंट है, तो मैं ये सोचने का मेरा ख्याल है कि मुझे बहुत ज़रूरत है कि ये इंसान और इसका अमल एक चीज़ नहीं है। यानी अ मैन शुड नॉट बी, एक आदमी ने लेट से इफ समबडी हैज एक्सप्रेस एन ओपिनियन विच इज़ अगेंस्ट योर्स और विच इज़ क्रिटिसाइजिंग योर्स, तो उसके नतीजे में आपका हक है कि आप ये कहें कि ये इसकी ये राय से मुझे इत्तफाक नहीं है। एक आदमी ने गलत काम किया है, बुरा काम किया है, तो उसका काम आप नापसंद करें, बहुत नापसंद करें, और उसकी खैरखाई में उसको जिस हद तक बता सकते हैं जरूर बताएं कि इसका नुकसान होगा आपको, या आप किस तरह सोच रहे हैं कि आपको ये बुरा नहीं लग रहा, इस तरह करना क्यों बुरा नहीं लग रहा। जबकि ये अगर हम किसी से भी बात करें, क्या आप ये समझते हैं कि इस बुराई को जो कि आपकी नज़र में उनके यहाँ बुराई है, वो क्या इसको पब्लिक में लेके आना गवारा कर देंगे? अगर नहीं करेंगे तो जाहिर है कि वो भी इसको बुरा समझते हैं, या बुरा समझते हैं या सोशली एक्सेप्टेबल नहीं समझते हैं, इन दोनों में बड़ा फर्क हो सकता है. यानी एक चीज सोशली अनएक्सेप्टेबल हो सकती है, जरूरी नहीं कि वो बुराई हो. लेकिन जिस तरह अभी अभी आयशा ने भी सवाल किया, एक चीज अच्छाई भी हो सकती है और वो सोशली आपके ग्रुप में अनएक्सेप्टेबल हो सकती है. तो एक आदमी जो कुछ कर रहा है, एक तो ये कि उसको उसकी नजर से देखना है, एक को एक बात को बड़ी अच्छी तरह से समझ लें, वो ये कि किसी आदमी की बुराई गुनाह तब बनती है जब वो उसको गुनाह समझता है या गलत समझता है और फिर भी करता है. इससे नहीं बनती कि मैं क्या समझता हूं, इससे बनती है कि वो क्या समझता है. वो एक चीज को गलत समझता है और फिर भी उसमें मुलव्वस है, तो अब एक प्रॉब्लम है. तो इस वजह से अगर कोई आदमी ये ऐसा कर रहा है तो उस आदमी से नफरत में या किसी भी शख्स से नफरत में जल्दी ना करें. ये डिपेंड अगेन इट, मैं आई एम नॉट सेइंग कि ये इट्स अ जनरल आंसर टू एवरी क्वेश्चन. हर बुराई की अपनी एक वैल्यू है और हर एटीट्यूड की अपनी एक बैकग्राउंड है. हर हर आपका जो रिलेशनशिप है उस शख्स के साथ, वो एक लॉन्ग टर्म इस तरह का रवैया आपके सामने आ रहा है, तो जाहिर है दिलों में दूरियां पैदा होनी शुरू हो जाएंगी. अगर कम्युनिकेशन ही नहीं है तो क्या बात करेंगे हम. तो इसका हम कर कुछ नहीं सकते, ये है जो इसका सबसे प्रिसाइज आंसर है. हम सिर्फ ये कर सकते हैं कि हमने अपने आप को क्या करना है, उसके बारे में सोचना छोड़ दें, उससे ताल्लुक में दूरी पैदा कर लें. ये सब कुछ ही आपके लिए जायज है, मतलब इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको कि मैं समझता हूं कि नाजायज है. अपने आप को बुराई से बचाएं, बस दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट.
Moi sahab, I wanted to ask you, recently I learned a couple who I know very well announced here that their 15-year-old daughter said that she wants to become a boy. And unka ye reaction tha, anger, crying, distress, really reacted that this can't be happening. And they got angry with the daughter, they tried to make her understand. आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, इस किस्म के सिचुएशन विच कैन हैपन टू एनीबडी, व्हाट सॉर्ट ऑफ अप्रोच शुड वन बी टेकिंग, बिकॉज़ द गर्ल इज डिटरमिंड दैट आई एम अ बॉय, आई फील लाइक अ बॉय एंड आई वांट टू बिकम अ बॉय एंड टेक द नेसेसरी स्टेप्स टू बिकम इनटू अ बॉय, नॉट रिमेन अ गर्ल. तो ये
आई थिंक दिस इज अ क्वेश्चन ऑन विच आई कैन नॉट एक्चुअली cannot comment, because I cannot answer this question, because I'm not aware of the reality of this biological issue. If the person feels, and you know, the experts in biology, they feel that this is a normal thing, a person can be born with a girl's, you know, body and be a boy, I am not one to you know, I seriously am not qualified to comment on that. I think that if it can be scientifically proven that the person in question is really a different gender, then I think from a religious perspective, my opinion would be then that person is not responsible to maintain her existing gender and she can convert. But I am not one to, I'm not qualified to be able to say that this can really happen. I don't know about it. I hope the point is clear what I'm saying.
No, Moisa, I wanted to know about the parents' reaction. I when she, they were talking and they were showing their anger and they said, no, she cannot do this at all. I just wanted to know emotionally, when our children, something unfortunately happens, are we supposed to pay attention to them? Are we supposed to force them, this cannot be done? Or is it better to find out medically what can be done? I'm just thinking of a 15-year-old. Obviously, she herself is distressed and can't understand what's happening to her. I'm just wondering about the parents' reaction.
I think whether it's the parents or any other elders, we need to be more empathic towards the other's feelings, and we should try to understand why is the other person being so adamant that they want to do certain things which we till yet have not been able to identify with, or till we don't really value or question, we don't really understand. Maybe there is something wrong with our understanding, or maybe there is something wrong with the child's behavior. that is what I said, that, you know, I'm not the one to be able to say anything. But if there is such an event, and if the parents are adamant that they will not allow such thing to happen, then if this is a reality, this is a biological reality, then I would think that ultimately they will have to give in. Ultimately they will. Because ultimately, when the child grows up and becomes an adult, then she will start taking her own decisions.
I just felt they should be a little kinder than the way they were telling it. That's just how it said. Allah jaane is pe kya guzar rahi hai. Mera yehi sawal tha ke
sahi keh rahi
hai. Maa baap pe guzar rahi hai, but bachi pe bhi to kuch guzar raha hoga.
I totally agree with you ki hame dusre ki yehi maine baat darj ki thi ki hame empathy show karni chahiye. जिस तरह की सिचुएशन है उसमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग शो करें और मिलकर कोई सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए, बजाय इसके कि जो सोल्यूशन मैं कह रहा हूँ बस वही एक्सेप्टेबल है, ये कोई बहुत अच्छा सोल्यूशन नहीं होगा. और पेरेंट्स को इस चीज से थोड़ा सा अपने अंदर थोड़ी सी लचक पैदा करनी चाहिए. कुछ कॉन्सेप्ट जो है, अगर वो चाहे साइंस की बैकिंग पर, और साइंस ठीक है या गलत है ये तो मैं नहीं जानता हूं, इसमें ज्यादा बेहतर लोग हैं जो कि इस पे कमेंट कर सकेंगे, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि साइंस की बेसिस पर अगर एक आदमी ये फीलिंग शुरू हो जाए और वो फिर उस फीलिंग में स्ट्रेंथ पैदा होनी शुरू हो जाए. फीलिंग्स का तो वही मामला है जो मैंने अभी आपसे अर्ज किया, आपको गुस्सा जो है वो चढ़ा है, खत्म हो गया, लेकिन आप अगर उस इंसिडेंट के बारे में सोचना शुरू करते हैं तो एक ही चीज जिसने कि सुबह आपको गुस्सा चढ़ाया था वो 3 दिन तक भी रह सकता है, और ये फीलिंग स्ट्रॉन्गर होती चली जाएगी, यहां तक कि आप कुछ कर बैठे खुदा ना खास्ता. ये फीलिंग्स की रियलिटी है. तो एक आदमी जिसने के साइंस की बेसिस पर ये समझ लिया कि ऐसा भी होता है एक बच्चा या एक बच्ची, और वो इसके बारे में अब सोचना शुरू हो गया है, तो हो सकता है सिर्फ इस वजह से स्ट्रांग होती जा रही हो फीलिंग. मैं इसको ना तो जज कर सकता हूं. देखें, एक बात तो ये कि सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये बात होती है, नंबर एक. नंबर दो कि क्या ये इसके साथ है, इसकी डायग्नोसिस, ये सारी चीजें हमें करनी पड़ेंगी. अगर हम इस चीज इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि नहीं हमने ये करनी ही नहीं है, तो ये फिर जाती होगी. आई थिंक वी शुड शो सम एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग, इवन इफ इट इज अगेंस्ट आवर ओपिनियन. वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू एनफोर्स आवर ओपिनियंस ऑन एवरीबडी एंड इवन ऑन आवर चिल्ड्रन, एंड स्पेशली आफ्टर दे हैव ग्रोन अप टू बी रिस्पॉन्सिबल ऑन देयर ओन.
एक छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ कि आई हैव एन ऑर्थोपेडिक सर्जन इन लंडन हु ट्रीटेड मी व्हेन आई हैड एन एक्सीडेंट. एट दैट टाइम द डॉक्टर वाज अ मैन एंड ट्रीटेड मी, सेव्ड माय लाइफ. इयर्स लेटर आई लर्न दैट शी हैड बिकम अ वुमन, एंड नाउ व्हेन आई मीट हर ओनली रिसेंटली, शी हैज बीन अ वुमन फॉर द लास्ट 10 years एंड शी इज स्टिल अ सर्जन. सो उसको सोच के मैं सोच रही थी कि भाई अगर ऐसी चीजें जिंदगी में होती है तो इंसान जरा सा अंडरस्टैंडिंग दिखा दे कि अल्लाह जाने.
मेरा भी यही जवाब है कि अल्लाह जानता है जी, और इसमें जो लोग एक्सपर्ट हैं वो जान सकते हैं, वो दे आर इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन.
बहुत बहुत शुक्रिया मोहित साहब, आई टेकन सो मच ऑफ योर टाइम.
नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम.
तमाम दुनिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड एक चीज है जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या आजादी इजहार राय के नाम से जानी जाती है, और उसमें मतलब वो उसको दे जस्ट टेक इट एज अ डिसेंट. लेकिन उस मामले में हम लोगों की जो राय है वो जरा कुछ एक्सट्रीम पे चली जाती है, जब वो बड़ी शख्सियत पर किसी किस्म का कमेंट करते हैं या कुछ, तो हम जो है वो उस गाली को गोली में बदलना पसंद करते हैं. तो कैरेक्टर डेवलपमेंट में वो चीज भी तो आ जाती है ना, कि एक कलेक्टिवली जो है वो किस तरह चीजों को फेस करना है, और किस तरह मतलब अपना उसमें भी हम अपने पैराडाइम में चले जाते हैं, उसमें भी हम दूसरों की बदगुमानी में चले जाते हैं. तो उसमें भी तो हमें अपने आप को किस तरह इम्प्रूव करें हम एक कौम की हैसियत से, और एक मतलब कि अगर दूसरों की राय मुख्तलिफ है तो हम उसको चेंज करने की कोशिश करें, उसके बारे में आप क्या आप कुछ कॉमेंट करें.
देखिए, दूसरा जो है वो जाहिर है कि फर्द है या कुछ अफराद है, एक है कौम, कौमी इज्तिमाइयत में खड़े होना और इज्तिमाइयत को ठीक करना. ये मैं इसको इसको इस वक्त अपना मौजू नहीं बनाता जी, इसलिए क्योंकि बेसिकली जो मैं ये समझता हूँ कि जो असल काम है वो इंडिविजुअल को करना है, वो इंडिविजुअल ही के लेवल पर होना है, और अगर आप ठीक होंगे तो आपके इन्फ्लुएंस से बहुत लोगों ने ठीक होना है, ये भी एक लाजमी चीज़ है. जब आप जैसे ही आप अपना फोकस कलेक्टिविटी को बनाते हैं तो इंडिविजुअल को इग्नोर करना पड़ेगा जी, ये ध्यान में रखिए। यानी वो एक बड़ा टारगेट है जिसको, और हमारी सियासत का हमेशा ही वो टारगेट रहा है, एजुकेशन उसको टारगेट करना पसंद करती है। आई थिंक दैट जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है इट नीड्स टू फोकस ऑन द इंडिविजुअल, और इंडिविजुअल से इंडिविजुअल तक बात जाएगी और ये इस तरह से फैलेगा अगर इसको अल्लाह ताला ने तौफीक दी फैलने की, और जिस हद तक तौफीक दी फैलने की। मैं इस चीज को जानता नहीं हूँ कि इसके नतीजे में क्या कभी मेरी जिंदगी में ये सोसाइटी या सोसाइटीज कोई इसके बेसिस पर ठीक हो जाएंगी, एंड आई डोंट इवन हैव मच यू नो डिजायर फॉर दैट। अगर कोई एक शख्स भी मैं अल्लाह ताला की मर्जी से किसी की जिंदगी में बेहतरी कंट्रीब्यूट कर सका तो मुझे उम्मीद है कि मैं इंशाल्लाह आखिरत में मैं अपनी प्रेजेंटेशन दे सकूंगा कि मैंने कुछ कोशिश की थी। माजरातन इला रब्बिना
सर, तो मैं भी तो कौम का हिस्सा हूँ ना, तो मैं अगर अपनी राय देती हूँ बाकियों से डिफरेंट, तो मैं अपना हिस्सा डालती हूँ उस पॉजिटिविटी में एक तरह से।
आई टोटली एग्री जी, आपको हक है, आप अपनी जरूर करें। और ये बात के कौम जो है वो उस पर एक बुरा रिएक्शन शो करती है तो कौम का मिजाज वो बन चुका हुआ है, और हमारा ये ख्याल है कि अच्छाई जो है, देखिए ये प्रॉब्लम होती है, यानी जिस वक्त आप इंडिविजुअल से अप्रोच करते हैं तो आपका ये ख्याल है कि सारी की सारी करेक्शन डिपेंड करती है अंडरस्टैंडिंग पर और इस अवेयरनेस पर कि हमने अपने आप को बेहतर करना है, और जैसे ही आप ऊपर से नीचे लेके आना चाहते हैं तो असल में ये बन जाती है कि सारी की सारी जो करेक्शन है वो डिपेंड करती है कि लॉज कितने स्ट्रांग होंगे और कितनी स्ट्रिक्टली वो अप्लाई होंगे और कितना बुरी तरह से वो पनिश करेंगे। ये चीजें जो है, ये मेरा ख्याल है कि अच्छाई में, इम्प्रूवमेंट में लॉन्गर रन में नुकसानदेह हो जाती है कई दफा।
थैंक यू सर,
यू मोस्ट वेलकम जी। अच्छा जी, मैं आई जस्ट ट्राई टू क्विकली रीड दिस, आई नीडेड योर हेल्प हियर। आई वांट टू नो वेदर द नेचुरल स्टेट ऑफ मैन हैज अ रिलेशनशिप विद हिज मॉरल एंड स्पिरिचुअल क्वालिटीज, विद अ नेचुरल स्टेट ऑफ मैन हैज अ रिलेशनशिप। देयर इज एन इंग्लिश एडेज दैट वी आर व्हाट वी ईट, so does this too implies that the food we eat has a relationship to our moral and spiritual qualities? It apparently seems that it is true. We need to have a balanced diet, and I think that is the most important thing. And one of the things I personally believe is that even the prohibition of swine, pig meat, must have something to do with this aspect. And otherwise it would not have been a part of religious directives. Religion does not prohibit things because they are not suitable for health, maybe. It would prohibit because of it, of their moral impact. Because I had this concept for long that sometimes we can control our moral qualities by food we eat. I think this is something that we need to study, and maybe it will prove that we do. But what I think is that nothing that is allowed by the Sharia, if eaten in the right balance and at an appropriate time and quantity, would have any negative impact on our morality. Anything that is considered as allowable by the Sharia. I hope that is clear. My point. We are actually running out of time, and Jero Saab, if possible, if you still have any questions about this, I would request that we take them to the next class. I'll just read this statement. Like, the swine is a compound word from su and ara, which means I saw it foolish or dirty. So I think we were not allowed to eat the swine because in the sight of God it's dirty. It has its moral implications as well, which might not be known to me. I'm not a food expert, but I'm sure that because the Sharia has prohibited them, there must be some moral reason for that. I agree with you till that aspect. I don't know if this is what the word means, but I think whatever it is,
it's yeah. Jazakallah. Yeah, it's a concept that I had. I wanted to verify this because when you have something, you need to verify. Yeah. Definitely, it needs much research and much work to do. Inshallah.
Right.
Allah bless you.
You too. Thank you very much, ji. Sab logon ko bahut shukriya. Aur inshallah, hab next week, Allah ne chaha to isi time pe uski ijazat hui to zarur milenge ji. Bahut shukriya aapka. Assalamu alaikum. Sure.